పతితానం పావని వైష్ణవేభ్యో నమో మహాపదన్నాయ కృష్ణ ప్రేమ కృష్ణాయ కృష్ణ చైతన్య నమ్నే గౌరశ్రీ గురవే గౌరచంద్రాయ రాధికాయ కృష్ణాయ కృష్ణ భక్తిహీనాయ పరాశకామాదికరం కృపామయీ త్వాం శరణం ప్రపన్న బృందే నమస్తే చరణాయం ప్రభుజంతం పేతమపి పుత్రేతి తన్మయతయా సర్వోభిః తం సర్వభూతం తవైవాస్మి తవైవాస్మి నజిమామి తయాహి ఇతి పిత్యే రాధి తన్నయ మామ చరణం. व्यास पूर्णिमा या गुरु पूर्णिमा के उपलक्ष्य में पहले दिन श्री व्यास देव उनकी विशेषताएं उनका प्रतिपाद्य विषय भागवत का ये सब हम लोगों ने कुछ कुछ विचार किया. कल हम लोगों ने सनातन गोस्वामी जी के विचारों पर हम लोगों ने कुछ विचार किया. उनका प्रतिपाद्य विषय क्या था उनके बृहद भागवतामृत इत्यादि ग्रंथों में और व्यास इस पूर्णिमा से उनका प्यार संबंध रहा है. उसी दिन वे भी अप्रकट हुए इसलिए उनके साथ में उनकी भी ब्रज में बुढ़िया पूर्णिमा इसीलिए होती. ये भी जगत गुरु हैं. व्यास जी ने जो काम किया है उन्होंने भी वही. तो आज हम लोग फिर व्यास जी के रचित श्रीमद् भागवत जो उनका अंतिम ग्रंथ है और सब शास्त्रों का निचोड़ है, गायत्री का भाष्य है और वेदों का अर्थ है विस्तार पूर्वक. गायत्री का भी मूल तात्पर्य यह है, महाभारत इत्यादि सब शास्त्रों का सार है. तो वो श्रीमद् भागवत का प्रतिपाद्य विषय क्या है इसके विषय में बेटी मधु 5-7 मिनट कुछ बोले संक्षेप. इसने श्रीमद् भागवत पर PhD किया है, संस्कृत पढ़ी है संस्कृत भाषा में और PhD किया.
महाराज नहीं
आए,
तो कल थे आएंगे
किसी काम में
सब व्यवस्था मिल रही.
हमारी जो श्रृंखला चल रही थी कि वेद पुराण और उपनिषदों के बाद श्रीमद् भागवत रूपी सूर्य होने को वेदों में श्रुतियां और स्मृतियां हैं और उन्हें भगवान श्री कृष्ण का अपौरुषीय ग्रंथ माना गया है. अपने आप की है, अपने आप सुनी गई, अपने आप स्मरण की गई. इसलिए वेदों का जो तार्किक उनके अलग अलग अर्थ अपनी अपनी कभी सिद्धांत के आधार पर और कभी कभी अपनी इच्छाओं के आधार पर परिवर्तित होते गए और इतने अधिक उनका अर्थ खराब हो गया कि आर्य समाज जैसी संस्था बन गई। सस्मे देवाय हमेशा विभिन्न, वेदों में सभी देवताओं की उपासना की गई और एक प्रश्न आ गया कि मैं अपनी आहुति किस देवता के लिए समर्पित। जब इस तरह के अनेकों ऊहापोह आवर्तक के विदर्भ चल रहे थे और रामानुजाचार्य ने पार्थाचार्य और वल्लभाचार्य जी अनेकों ऋषि मुनि तत्वज्ञ हमारे सामने 15वीं-16वीं शताब्दी में आए, जिसे हमारे साहित्य का भक्ति काल माना जाता है, तो उस समय फिर से एक बहुत बड़ी विडंबना आई कि कौन सा मार्ग सही है। उसी समय श्री कृष्ण जी ने कृपा करके चैतन्य महाप्रभु के रूप में जन्म लिया। यद्यपि इसकी जो भावराज की व्याख्या है तो हम कहेंगे कि इमली कला भी वो भापा प्राप्त हो गया था, लेकिन यदि सामयिक दृष्टि से देखा जाए तो उस समय वल्लभाचार्य जी जो थे, जिसे हमारे गौड़ी संप्रदाय ने जीव गोस्वामी और रूप गोस्वामी की आपसी तत्व को देख के छुपा के रखा कि वल्लभाचार्य जी ने गदाधर जी का शिष्यत्व ग्रहण किया। आज हम गिरिराजी में गोविंद कुंड के दर्शन कर रहे थे, वहां पर श्रीनाथ जी का जो प्राकट्य स्थल है, तो श्रीनाथ जी में जब हम प्रवेश कर रहे थे तो ऐसा लगा ही नहीं कि ये वही श्रीनाथ जी नहीं है जो माधवेंद्र कुल में प्रकट किए हैं या जिन्होंने माधवेंद्र में कृपा की है। जब वहां पर रहने वाले संतों से पूछा तो उन्होंने कहा आपकी बात ठीक ही है, क्योंकि वल्लभाचार्य जी ने जो श्रीनाथ जी को भेजा वो दूसरे थे ये नहीं, क्योंकि भगवान तो ब्रज छोड़ के जाएंगे। तो इतनी सारी बातें हैं उस दिन, और सबसे बड़ी बात जो मेरे मन में आ रही थी वो ये थी कि व्यास स्वयं भगवान के अवतार हैं, नारायण के अवतार, और उन्होंने ये कहा एकादश स्कंध में भगवान स्वयं उद्धव से बोले कि आचार्य मां विजयनी, गुरु को मुझे ही समझना, गुरु तत्व जो है वो मैं ही हूँ। अब इस बात को विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, लोकनाथ गोस्वामी, नरोत्तम ठाकुर किस किस रूप में ग्रहण करेंगे? विश्वनाथ चक्रवर्ती होंगे तो बोलेंगे साक्षात हरि के समस्त शास्त्र, और इधर नरोत्तम ठाकुर आ जाए तो केवल भक्ति सर्व, गुरु के चरण क्या है वहां केवल भक्ति है, चक्षुदान जिला जी और दिव्य ज्ञान घटे प्रकाश है, ये गुरु तत्व है। इस गुरु तत्व की विवेचना बाद में हमारे आचार्यों ने, हमारे गुरु वर्गों ने, गुरु परंपरा ने विस्तार रूप से की है, परंतु गुरु तत्व को समझना, गुरु तत्व के विषय में बड़े बड़े श्लोक बोल लेना, बड़े बड़े सिद्धांत कह देना, अभिव्यक्ति कर देना और अनुभूति का नाम होना, ये तो सामंजस्य नहीं है। गुरु कृपा का सामंजस्य अनुभव करना पड़ेगा, क्योंकि भागवत जो है व्यास जी का अर्थ है व्यास रूप की जो सब विस्तार कर देते हैं, तो व्यास जी को चतुश्लोकी भागवत भगवान कृष्ण ने सुनाई, भगवान कृष्ण से नारद के पास आए, नारद के पास से व्यास जी के पास आए, तो वो चतुश्लोकी भागवत में जो विस्तार किया गया वहां पर वृत्रासुर मुक्ति आई, वृत्रासुर की प्रार्थना आई तो वहां पर गोपियों ने यह भी कहा ये जो कथा है विद्वान लोग इसको गाते रहे हैं, तो इसने ये सिद्ध कर दिया कि भागवत खाली पुराणों का मंथन नहीं है, ये जो भागवत है वो जाने कब से चले आ गया, क्योंकि हंस दूत में रूप गोस्वामी लिख रहे हैं कि जब ललिता जी ने मराल को देखा राजहंस को तो उनसे कहा कि जब तुम मथुरा जाओगे तो वहां पे कृष्ण का जो महल होगा वहां पे अक्रूर बैठा होगा, कृतवर्मा बैठा होगा, सातिकी बैठी होगी और वहीं पर सारे स्तंभों में भागवत कथा लिखी होगी। तो भागवत सब कुछ लिखने के बाद व्यास जी ने लिखा, इसका कारण क्या होगा? फिर से एक प्रश्न है, फिर से एक प्रश्न ये है कि जिस ब्रह्मवैवर्त पुराण में राधा जी की खूब व्याख्या की है व्यास जी ने, भागवत तक आते आते वो अभिव्यक्ति अनुभूति में बदल गई और व्यास जी राधा जी के नाम पे चुप हो गए। तो अनेकों प्रकार की बातें हैं और ये जो हर साल गुरु पूर्णिमा आती है तो हम सनातन गोस्वामी इत्यादि की बात करते हैं, लेकिन फिर से अवलोकन करना पड़ेगा कि कितना सनातनत्व हमारे हृदय में है, कितना नवोत्तमत्व हमारे हृदय में है, कितना लोक नाटकत्व हमारे हृदय में है। यदि नारायण तक से शुरू हो तब तो लोकनाथ गोस्वामी तक पहुंचे, या सनातन गोस्वामी जो ब्रज भागवत में थी वो तो अपने संप्रदाय का सार है कि जो कुछ भी भगवान कह रहे कि मैं दया कर रहा हूँ तो पुस्तक के रूप में तू मेरी कृपा समझ, या लोग तुझे मिल रहा है उसको मेरी कृपा समझ, चलो महज संग हो रहा है उसको मेरी कृपा समझ। अनुभूति की बात तो ऐसी है किसी किसी संप्रदाय में कुंभलदास जी या हमारे संप्रदाय में कविरूप गोस्वामी के लिए भी ऐसा कहा जाता है कि जब अकबर आया और उनको वृंदावन का दर्शन कराया तो उन्होंने दिखा दिया कि तुम मोसी घाट का ही कोना ठीक कर दो। तो कुंभलदास जी से भी कहा था कि जहां तक वो वृंदावन को हीरा पत्थर हीरा माणिक से बना दे सकते थे, हमारी स्थिति उसके मुकाबले कुछ भी नहीं है। फिर किताबों में लिखी या अवध बिहारी लाल कपूर की लिखी या फिर हरिदास प्रकाशन से लिखी हुई किताबों की यदि उन कथाओं को हम सुनाते ही रहे तो गुरु पूर्णिमा का अर्थ मेरी दृष्टि से पूरा नहीं होता। अपूर्णता अनुभूति की परिपक्वता जब तक नहीं होती तब तक पूर्णिमा कैसे मानी जाएगी। गुरु पूर्णिमा में का मतलब है हमारे जितने भी अभाव है भाव संबंधी तत्व संबंधी उनको पूर्णता प्राप्त। महाराज ने पांच मुझे
भागवत
विषय का प्रतिपाद्य है कृष्ण तू भगवान से जो अनेकों प्रकार के ये बात हम अच्छी तरह से जानते हैं और उसी को गीता में कहा गया वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभा, जिसने अनेक अनेक जन्मों तक अनेक अनेक पुण्य करके जब ये समझ लिया कि कृष्ण के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है तो हमारे जो गोस्वामी गण है उन्होंने कहा कि उसका समझो ये अंतिम जन्म। तो इतनी बड़ी गारंटी वहां से मिल रही है इसके बावजूद भी हम में से कितने हैं जो बहुत सूक्ष्म रूप से कृष्ण चिंतन कर रहे हैं। कृष्ण चिंतन में कितने लोग देख पाते हैं अपनी अंतश्चिंतित देह को अपनी साधना को, क्योंकि जैसी साधना वैसी सिद्धता। इसकी बात मेरे मन में क्यों आती है कि दंडकारण्य वन में जब भगवान श्री राम से हमारे जो 60,000 ऋषि मिले तो 60,000 ऋषियों ने उनसे कहा कि हम आपका आलिंगन करना चाहते हैं, तो उन्होंने कह दिया कि मैं तो आपका आलिंगन कर नहीं सकता क्योंकि मैंने तो एक पत्नी व्रत धारण कर रखा है। अब प्रश्न ये है कि आपने पत्नी कर रखा है तो हम कोई स्त्री थोड़ी है, आप फिर क्यों नहीं आलिंगन कर सकते। तो भगवान राम ने कहा कि नहीं, मैं जब कृष्ण रूप में जन्म लूंगा तब तुम्हारी मनोकामनाएं पूर्ण करूंगा। इसका कारण यही है कि जब वो अपनी अंतश्चित्त देह से वो भी भाव का भजन कर रहे थे तब शरीर का मूल्य कुछ नहीं रह जाता। भगवान ने उनका भाव देखा, ये नारित्य है, ये गोपी किंकरी बनना चाहते हैं या गोपी के रूप में जन्म ग्रहण करना चाहते हैं, इसके लिए मैं इनकी मनोकामना नहीं पूर्ण करूंगा। इसके साथ क्या होता है कि हमने जैसी साधनाएं की वैसी सिद्धता हासिल। साधना में अपने तत्व का ध्यान, अपने गुरु का ध्यान और गुरु परंपरा का ध्यान, जहां हम अटके जहां हम भटके वहीं पर सब कुछ समाप्त है। और यदि वहां पर हमारा ध्यान नहीं चलता रहा, साधना चलती रही, साधना की उन्नति ऊपर उठती चली गई, वो भक्ति लता दिन पर दिन उन्नति की तरफ पहुंची चली गई, तो साधना सिद्धता की श्रेणी तक पहुंच जाती और इसी जगह से उसके लिए भी बहुत सारे जन्म भी लेने पड़ते हैं और ना ही कृष्ण को अर्जुन से कहना पड़ता है कि तेरे मेरे बहुत जन्म बीत गए तू भूल गया मुझे याद है। तो अनेकों प्रकार की बातें हमारे सामने आई, पुराणों में सात्विक पुराण आए, तामसी पुराण आए, राजसी पुराण आए, और उसके बाद जब भागवत प्रकट किया तो उसमें ऐसी कौन सी बात थी जो पुराने पुराणों में नहीं थी, ऐसी कौन सी बात थी जो पहले क्या वेदों में ईश्वर तो नहीं है, वेदों के पद पद में रखा है। हमारे सारे पुराण क्या ब्रह्मा जी, जो ब्रह्मा की स्तुति गाई जाती है, वो जो ब्रह्मा जो राधे राधा कृष्ण के चिंतन में डूबा है, उस ब्रह्मा की स्तुति गान से क्या लाओ। इसलिए मेरा अपना मंतव्य यह है कि सब पुराणों में व्यास जी सिद्धांतों की भूमिका बना रहे थे, और जब गोटी भाव तक वो पहुंचे हैं तब वो कह उठे तब कथा में तम तत्व जीवना। आपका तो कथा में है, सदियों सदियों से भूमिका लोग इसका गान करते रहे हैं, यह कोई नई बात नहीं है।
भागवत का प्रतिपाद्य विषय
ओम अज्ञानम विनाम दृष्ट ज्ञानांजन सलाकय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। पञ्चाकल्पवृद्धश्च कृपा सिन्धुर्भये वच पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। जहाँ कृपा ही भगवान की कृपा, जहाँ कृपा व्यक्ति भक्त जीव समय लागम न कोनो सद्गुरु संभावना नहीं। সর্বশ্রেষ্ঠ বলে প্রতিপাদিত করেছেন বা প্রতিপাদিত হয়েছেন সেই বস্তুটি শ্রীমৎ ভাগবতের মধ্যে পরম পৃষ্ঠ রূপে রূপায়িত হয়েছেন। শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিটি যখন পৃষ্ঠ রূপে আমাদের কাছে এসে উপস্থিত হয়, সেই শ্রেষ্ঠ ব্যক্তির সম্মান আমরা কোনদিন পেতে পারি নাও পেতে পারি, কিন্তু শ্রেষ্ঠটি যখন পৃষ্ঠ রূপে শ্রীমৎ ভাগবতের মধ্যে ধরা দিলেন, তিনি যখন যশোমতী মায়ের কাছে পুত্রের জন্মগ্রহণ করলেন, যখন তিনি পাঁচ প্রকারের সেবা প্রকাশ করেছেন, পাঁচ প্রকার শ্রীমৎ ভাগবত দেখিয়ে দিয়েছেন, সেই শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিটি শ্রেষ্ঠ হয়ে পাঁচ প্রকারে সেব্য হতে পারেন। এবং তার মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ পররস মাধুর্য মাধুর্য রসের চরম বিষয় রূপে শ্রীমৎ ভাগবতে তিনি বিষয়গ্রস্ত হয়ে উঠেছেন। সারা বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডে কৃষ্ণ ব্রহ্মাণ্ড যার চরমতলে এসে উপনীত হয়, তিনি আবার কাহারণিকলে গিয়ে যখন চরমতলে রুদ্রপটি খান, তখন সেখানেই তো বলেছেন খাচ্ছেন, তখন সেই বস্তুটি কি, এইটাই তো শ্রীমৎ ভাগবতের প্রতিপাদ্য বিষয়। এটি আস্বাদন করতে পারবে কি করে, গুরু পূর্ণিমা শ্রীমৎ বেদব্যাসের আবির্ভাব উপলক্ষে আমরা ছিল মহাজীব পূজা করেছি, গুরুবারকে পূজা করেছি, তারও পূজা করেছি। সুতরাং তার কৃপা হলে সেই সদ্গুরু শিক্ষা গুরু তার কৃপা হলে করুণা হলে শ্রীমৎ ভাগবতের প্রতিপাদ্য বিষয়ে আমাদের হৃদয়ে উদ্ভাসিত হবে। সেই গুরুবার কর্মটি যেখানে সেটি কি করে লাভ হবে শিষ্যের, সৎ শিষ্যের লাভ হবে সেটি কি করে লোক, হ্যাঁ সৎ শিষ্যের লাভ হবে তখনই সেই সৎ শিষ্য বলে পরিচয় দিতে পারবে যিনি অবিচারে গুরুদেবের গুরুমার্গের কথাগুলি যিনি অবিচারে প্রতিপালন করতে পারবেন, তিনি এই বস্তুগুলি লাভের অধিকারী হবেন। আমরা তো অনেক রাজার গল্প শুনেছি, রাজামশাই বলছেন বেগুন ভালো তাহলে ভালো, বলে বেগুন খারাপ বলে খারাপ, খেলে চুলকানি হয়, আরে বাবা জল উঁচু বলে জল উঁচু, জল নিচু রাজ জল নিচু, আমি যেটা বলি তুমি সেটাই বলো না, বলে প্রভু আমি তো ওই জলেরও দাস, উষুনিচুর দাস নয়, বেগুনেরও দাস নয়, আমি আপনারও দাস। এই জগতে যদি সাধারণ অবস্থায় এরকম বিষয়বস্তু প্রতিপালিত হয় কিন্তু এইখানে অনেক কিন্তু একটা ক্লাবকে যদি মঠ বলা হয়, গুরু যদি অনুমোদন করে আমরা নিশ্চয়ই সেটাও মেনে নেব। সুতরাং গুরুবার কর্ম এই বিচারে যেন প্রতিষ্ঠিত আর সমাগম গোস্বামী প্রভুর বিরোধী, সুতরাং সেই সমাগম গোস্বামী প্রভু সম্পর্কে বিরোধী সম্পর্কে সেই ছোটবেলায় পড়েছিলাম, নদী এই বৃন্দাবনে সমাগম এক মনে জপিছেন নাম, খানাকালে দিনবেশে ব্রাহ্মণ চরণে সে করিলেন প্রণাম, সুধালেন সনাতন প্রথমকে আগমন কি নাম ঠাকুর ইত্যাদি 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 করে আসছেন। এসে কি দেখলেন না লোহার পাতুরি টুটি সোনা হয়ে উঠে কুটি ছুটে নাই ছুটে, সঙ্গে সঙ্গে সেই লোহার মাদুরিটা সোনা হয়ে উঠলো আর সেটি তিনি সেটা দেখলেন একটা স্পর্শমণি, সেই স্পর্শমণিকে তিনি তুলে দিয়েছেন সেই ব্যক্তির কাছে বর্ধমানের মানকর থেকে যে ব্রাহ্মণ এসে বৃন্দাবনে জলাচন্দ্র স্বামী প্রভুর বাড়িতে বলেছিলেন তার কাছে এসে তিনি যখন গুরু কিরণ করেন গুরু এইরকম ভাবে শিষ্যকে পরীক্ষা করেন, একদম সাত রাজার ধন মানি তার হাতে তুলে দিয়েছেন, দিয়ে দেখছেন এবার তুমি কেমন করে তুমি প্রতিষ্ঠিত হও। হ্যাঁ দেখবেন আরে এইরকম একটা বস্তু গুরু মহাপদ্ম তিনি পায়ের পায়ের দ্বারা মাটিতে বাড়িতে তুলে রেখে দিয়েছেন, তাহলে এর থেকে এমন যে একটা বস্তু তার কাছে আছে যে আমার তখন তিনি বলছেন যে ধানে হইয়া ফানি মরিলে মানানা মহি তাহার খানি জানি মাগি মাগিয়ামি নতশিরে এত বলি নদী নিলে ফেলিল মানি, সেই মানিকটা নদীর জলে ফেলে দিয়ে গুরু পরমাত্মাকে আশ্রয় করে বলছেন হে গুরু পরমাত্মা আপনি কৃপা করুন করুণা করুন যে ধানে হইয়া ফানি যে ধানে আপনি খুনি হয়ে আপনি এই হোসেন সাহা স্যার সেই প্রাইম মিনিস্টার প্রধানমন্ত্রী তো পদ পরিত্যাগ করে এসে নদী নদীর তীরে বৃন্দাবনে ভগবানের নাম জপ করছেন সেই নামের মধ্যে যে মধু আছে সেই মধু আমাকে পান করান। হ্যাঁ তখন গুরু শিষ্যকে পরীক্ষা করে দেখলেন হ্যাঁ এই যথার্থ শিশু আর যোগ্য, তখন তিনি তাকে নাম প্রদান করেছিলেন। সুতরাং আমরা এইরকম ভাবে যদি এইরকম শুধু মুখে বলতে হবে না আজকে দিনে সেই সনাতন গোস্বামী প্রভু আমার ছেদন করে দিয়ে তাকে সৎপথে চালিত করবেন এবং আমাদের বিশ্বের সাথে বিশ্ব যদি চলে যায় কানি কানিতে একা আমি পড়ে রাখবো কর্তব্য সারিতে এই কথাগুলো শুধু থাকবে। এবার নিজের জীবনে দেয়ালে যখন পিঠ থেকে যায় তখন নিজেকে বাঁচতে বাঁচার জন্য চেষ্টা করতে হয়, সুতরাং সদগুরু নিশ্চয়ই আমাকে বাঁচাবেন তিনি আমাকে রক্ষা করবেন। হ্যাঁ আমি তার কাছে আমার এবং সনাতন গোস্বামী প্রভুর শ্রীচরণ কমলে বেদব্যাসের শ্রীচরণ কমলে বলে গুরু পরমাত্মাকে সর্বকে কথা দিই। হ্যাঁ সর্বশেষে আমার শিক্ষাগুরু শ্রীমৎ ভক্তি বিলাম আনন্দ স্বামী মহারাজের শ্রীচরণ কমলে আমার অন্তরি শাস্ত্রগুরু তন্ত্র প্রণাম জ্ঞাপন করে আমি আমার এখানে সভা প্রার্থনা করছি।
আজকে বিভিন্ন বক্তারা আপনা আপনা মন্তব্য প্রকাশ কিয়া বেটি মধু নে ভি ভাগবত কে সম্বন্ধে বতলাযা, এক বাত কি আগে রাখনি চাহিয়ে ধর্ম প্রজ্জিত কৈতব অত্র কর্ম নির্মস্তরানাম সতাং বেদ্যম বাস্তব বস্তু অত্র শুভদম শ্রীমদ ভাগবতম মহামুনি কৃতে কিংবা সত্য অবরুদ্ধতে ভাগবত মে মহাভারত ধর্ম প্রজ্জিত কৈতব অত্র কৈতব মে লাইসে শুদ্ধ ভক্ত হোনা বড় ভারী কঠিন লড়াই করলে কি প্রবৃত্তি আছে, ইসলিয়ে শ্রীমদ ভাগবত হ্যাঁ निर्मत्सराणां सत्ता, उसमें मत्सत्ता नाम की कोई ईर्ष्या द्वेष नाम की कोई चीज नहीं। भगवान का भजन करने के लिए ये सब अनर्थ माने गए, इसलिए अनर्थों से दूर रह करके श्रीमद् भागवत का ही अनुशीलन करो शुद्ध भक्त। जहाँ और शास्त्र आएंगे उसमें मल है, समल प्रमाण नहीं है। शुद्ध श्रीमद् भागवतम प्रमाण अमलम यद वैष्णवानां प्रियम, ये वैष्णव के लिए ये अमल प्रमाण है। और इस श्रीमद् भागवत के अतिरिक्त जितने भी पुराण हैं और हैं, वेद भी हैं, उपनिषद हैं, ये अमल नहीं है। इनमें कुछ न कुछ मलिनता है, इसलिए चैतन्य महाप्रभु के अनुगामी विशेष करके रूपानंद वैष्णव का केवल मात्र श्री चैतन्य महाप्रभु जी की वाणी का आदर और उनके माध्यम से श्रीमद् भागवत समझने की चेष्टा, इसलिए हम लोग जितने भी समल प्रमाण इत्यादि पुराण इत्यादि हैं, महाभारत है और सब चीजें हैं, उनसे हम लोगों का विशेष हमारे संप्रदाय का लेना देना नहीं। इसलिए न धर्मम न धर्मम सुतुकुल नृत्तम कुलिपुरु ब्रजे राधा कृष्ण प्रचुर परिचर्यां सची सुनुं नंदीश्वर पतिस्तत्ते गुरुवरं मुकुंद भ्रष्टत्ते स्मरणी। धर्म अधर्म से हमें कुछ लेना है, जगत में जितने भी धर्म चलते हैं भागवत कहे तहां परिपूर्ण है। इसलिए गोपियों के अनुभव में जिसको लक्ष्मी भी नहीं पा सके और लोगों की सोचता गोपियों के अनुभव में विशेष करके श्री रूप गोस्वामी के अनुभव में दिन रात इसी की चिंता हुआ करते थे और सब चिंता और सब विचार को छोड़ करके निर्मस्तर होकर के ऐसा ही करते। इसलिए उपदेश में उपदेश समझो मन बे क्रोधरो छोड़ो अत्याहार प्रयास से इस सब को छोड़ो और ये सब को ग्रहण करो। वैष्णव का सदाचार जो उसमें वर्णन किया है उसको चलो और अंतिम उपदेश को विचार करो। अंतिम उपदेश यही है सब शास्त्रों का सार तन्नाम रूप चरितादि सुकृतनां क्रमेण रसनां मनसि मूर्ज्य तिष्ठन् ब्रजे तदानुरागी जनान्ताय कालं नयेत् इच्छितां इत्युपदेशः। ब्रज में रहो, वैष्णव के अनुगत्य में रहो। कौन सा वैष्णव? रसिक तत्व अनुभूति संपन्न। ब्रज में रहे बिना ये होगा नहीं। अब्रज के परमाराध्यतम जो राधा कांतराश बिहारी नंद नंदन यशोदा नंदन है वही हमारे आराध्य है, उसी वृंदावन में रहता है। गुरु वैष्णव के अनुगत्य में रूपानी और भजन साधन करो और जितने भी विचार आते हैं उनको छोड़ दे दो, छोड़ करके भजन करो। यही जीवन का सार है, यही श्रीमद् भागवत का विचार है, यही श्री चैतन्य महाप्रभु का विचार है। गोपीर भर्तु पद कमलयो दास दासान, हम गोपियों के चरणों के दासों के दासों के अनुदासों के अनुदासों के दासों के अनुदास के बस यही अभिमान रहे और सब अभिमान मैं जगत में हूँ ऐसा हूँ ऐसा हूँ, कोई अभिलाषा न होने पाए। यदि इसका थोड़ा सा भी हमने पालन किया तो व्यास जी के हम लोग इच्छा को पूर्ण कर सकते, तब श्री चैतन्य मनोभीष्ट आदि भी कर वक्तव्य है। अभी कल हमको सवेरे जाना है,
फिर 15 दिन के बाद में बहुत जल्दी लौट आएंगे और फिर हम लोगों का वो रूप गोस्वामी की प्रतिथि आएगी, रक्षाबंधन पूर्णिमा आएगा, जन्माष्टमी आएगी, राधाष्टमी आएगी, झूलन का उत्सव, झूला झूले ये सब चीजें आएंगी, बस इसी में डूबे रहो। गौर परमानंदे बोल दीजिए।